नमस्कार श्रोताओं, मेरे साथ सीधे जयपुर से एडवोकेट जुड़ी हैं और मैं चाहता हूं कि शर्मिक वानी में वो अपना परिचय दें। इसके बाद हम लोग जो जवाबदेही कानून राजस्थान सरकार लेके आ रही है उस पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका शर्मिक वानी पे।
थैंक यू सो मच। मैं अपना परिचय से स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम आंचल बम है। मैं वैसे जयपुर की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी बीबीए एलएलबी सिम्बायसिस पुणे महाराष्ट्र से की है। उसके बाद से मैं जयपुर और दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। 2 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मोस्टली मैं चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर के इशूज पे काम करती हूँ। और उसके अलावा मैंने बहुत सारा काम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पे किया है, जिसमें मैंने अलग अलग तरह की और आरटीआई फाइल की है, फर्स्ट अपील, सीआईसी में भी मैंने बहुत सारी हियरिंग्स में पार्टिसिपेट किया है।
बहुत बहुत स्वागत है आपका आंचल जी। जो अभी राजस्थान सरकार ये जवाबदेही कानून लेके आ रही है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? ये आम आदमी को किस तरीके से फायदा पहुंचाने वाला है?
देखिए, मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये जो एक्ट आ रहा है, इसके वजह से दो एक्ट जो हमारे पहले से चल रहे थे, वो एक्ट को हम रिपील कर रहे हैं। तो ये जो नया एक्ट आ रहा है, कुछ नई चीजें तो लेकर आ रहा है, पर पुरानी बहुत सी अच्छी चीजों को ये बंद कर रहा है। तो जैसे कि मैं आपको, अगर हम थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में समझें, तो दो एक्ट हैं, राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट और द राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट। ये 2011 और 2022 के कानून हैं, जिसको अब ये एक्ट आने पर ये दोनों पहले के दो एक्ट खारिज हो जाएंगे, रिपील हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से पहले के जो दो एक्ट थे वो बहुत ही डिटेल्ड थे और उसके प्रोविजंस बेटर थे अभी जो बिल आया है उससे।
तो इसमें टाइम बाउंडेशंस है, लगातार अगर कोई अपील होती है या जो है कोई शिकायत करता किसी भी जगह देता है, तो उसमें जो टाइम बाउंडेशंस नहीं थे और
जी
उनकी कोई निवारण ऐसा हो जाए, इसमें कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं था, उस वजह से जो भी शिकायत करता था वो परेशान होता था। तो उस वजह से जो इसमें शामिल किया गया है 15 दिन और 30 दिन की सुनवाई, उसको आप कैसा देखती हैं? कहां आदमी को किस तरीके से वो
देखिए, मेरे हिसाब से तो टाइमलाइन पहले के एक्ट में ज्यादा बेटर थी, जो हमारा राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट है और इनफैक्ट राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट में भी। दोनों एक्ट में टाइमलाइंस बेटर थी। एग्जैक्टली मेंशन किया था कि अगर अपील कर सकते हैं तो कितने दिन में अपील कर सकते हैं। अगर कॉन्डोनेशन होता है, मतलब मान लीजिए मुझे 30 दिन का टाइम दिया है अपील करने के लिए और मैं 30 दिन में अपील नहीं कर पाई, तो मैं वो अपील का टाइम भी बढ़ाने की जो प्रोविजन होता है, जिसको हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले बोलते हैं, उसका भी प्रोविजन था पुराने एक्ट में। पर जो नया बिल आया है, इसमें कहीं पे भी एक तो क्लियर टाइमलाइंस नहीं है, हर चीज में बोला है विद इन स्टिप्युलेटेड टाइम, मतलब जैसा कि बाद में जो इसके रूल्स आएंगे उसके अनुसार जो टाइम होगा उस अकॉर्डिंग ये फॉलो होगा। पहले के दोनों एक्ट में टाइम पीरियड एक्ट के अंदर ही गिवन थे।
आप जो हैं एक आम आदमी को पहले का जो कानून है उसको ज्यादा मुनासिब था, इसके आने के बाद वो खारिज होगा?
जी देखिए, 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी पुराने कानून की, जो बहुत अच्छी हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो है कॉम्पेंसेशन का पार्ट। पुराने वाला जो हमारा कानून था, राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट 2011 का कानून, उसमें अगर आपको सर्विसेज नहीं मिल रही हैं और आपकी कंप्लेंट को मान लो जब आप अपील में जाते हो या जब भी माना जाता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको सर्विस देनी चाहिए थी, और तो आपके पास आपको कॉम्पेंसेशन भी दिया जा सकता है, क्योंकि जो ऑफिसर जो आपको सर्विस नहीं दे रहा है उसके ऊपर तो पेनल्टी लगाई जाएगी, पर वो पेनल्टी का अमाउंट में से कॉम्पेंसेशन आपको भी दिया जा सकता है, जो कि नए कानून में है ही नहीं। तो कोई भी, अगर मान लो मैं शिकायत कर रही हूँ तो मैं आगे आ जाके अपील लूंगी, ये लूंगी, पर मेरे पूरे प्रोसेस का, मैं इतनी मेहनत करूंगी, उसका कोई कॉम्पेंसेशन, कोई मुआवजा मुझे नया कानून नहीं देगा। पहले के कानून में मुआवजा कॉम्पेंसेशन का प्रोविजन था, जो कि आपके कानून में नहीं है। दूसरी चीज ये है, अभी हमारा जो नया कानून जो लाने की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी बॉडीज बना दी गई हैं। देखिए, अपील की अलग बना दी गई है, ग्रीवेंस एंड रिड्रेसल अलग है, जिसमें भी 3 लेवल है, लेवल 1, 2, 3, और कहीं पे भी क्लियरली नहीं बता रखा है कि लेवल 1 से लेवल 2 पे कैसे जाएंगे और कब जा सकते हैं और क्यों जाएंगे, और अगर लेवल 2 से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो अपन लेवल 3 में कब जाएंगे। जो नया कानून है बहुत कंसाइज है, और मैं आपको एक वर्ड में समझाऊं तो इट्स नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन। जो हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, जो नया कानून है ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। कुछ चीजें अच्छी हैं ऑफकोर्स नए कानून में, जैसे कि ये जो ऑडिट बॉडी इन्होंने बनाई है, ये ऑडिट बॉडी इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका फाइनेंस भी इंडिपेंडेंट भी होगा, तो ये बॉडी अच्छी है, सेक्शन 10 के बिल के अंडर प्रोवाइडेड है। तो कई चीजें तो अच्छी हैं, पर काफी जो अच्छी चीजें पहले थी उसको लेकर जा रहे हैं। देखिए, जो राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट है वो इतना बड़ा एक्ट है, उसमें मतलब कितने सारे सेक्शंस हैं, उसको पूरा हटा कर पूरे इस वाले नए वाले बिल में दो सेक्शन में पूरी बात करती है। तो मतलब कितने सारे उसके इम्पोर्टेंट पार्ट हटा दिए गए हैं।
तो क्या इसके खिलाफ जो है आप जो बार एसोसिएशन है वो क्या इसके खिलाफ अपील कर रहा है, या इसमें कोई सजेशन आपकी तरफ से अगर सरकार को दिया जाए तो आपका क्या सजेशन होगा कि इसमें क्या बदलाव किए जा सकते?
देखिए, बार एसोसिएशन तो अभी इसके लिए अभी कोई एक्शन नहीं ले रही है। मतलब अभी बिल आया है और ये तो पार्लियामेंट का है, बार तो बहुत लेटर इन्वॉल्व होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे हम नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वैलिड तो है। देखिए, एट दी एंड लॉ अच्छा है, लोगों के लिए भलाई करना चाहता है, अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, पर हमें ये जानने की जरूरत है कि इस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास 2021 और 2022 का कानून था। 2021 में हमारे पास कानून था, 2022 का कानून है जो कि सेम चीजें देता है। तो आज मान लीजिए 10, 15, 12 साल हो गए हैं, तो आज तक कुछ भी, मैं वो एक्ट में क्या गड़बड़ थी कि ये नया एक्ट लाना पड़ा? क्योंकि नया तो हम दो तीन चीजें ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस एक्ट के थ्रू। तो पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि पहले वाला एक्ट कहाँ फेल हुआ, फिर ही हम नया एक्ट ला सकते हैं। और पहला वाला एक्ट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, हर स्टेज की हर चीज प्रोवाइड की गई है। इनफैक्ट, अगर सिंपल सी बात है, पुराने वाला एक्ट में ये भी बोलते हैं कि पेनल्टी कितने रुपए से कितने रुपए तक लगा सकते हैं, 500 रुपए से 5,000 रुपए तक लगा सकते हैं। नए वाला एक्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं, बस इतना सा बोलते थे कि पेनल्टी लगा सकते हैं। अब वो पेनल्टी 1 रुपए भी हो सकती है, 1 लाख रुपए भी हो सकती है।
पेनल्टी का अमाउंट इसमें जो है डिस्क्लोज किया गया है, मतलब उसको डिसाइड नहीं है कि कितनी पेनल्टी होगी।
हाँ जी, नए वाले में नहीं है, पुराने वाले में हमारे पास 500 से 5,000 रुपए तक का प्रोविजन था।
तो अभी आपका क्या सुझाव है सरकार को कि इसमें किस तरीके की बदलाव की जरूरत है, जो एक आम आदमी को फायदा पहुंचाने की जो मंशा से इसको पेश किया गया है, तो आपका क्या सुझाव है, क्या ये आम आदमी को फायदा पहुंचाएगा, या इसमें इतने ज्यादा कंफ्यूजन है कि आदमी जो है उसमें उलझ के रह जाएगा, क्योंकि कानून ऐसी प्रक्रिया है, क्योंकि लोग उलझना नहीं चाहते हैं, उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। हम देखते हैं कि
जी
दिल्ली NCR में वर्कर्स हैं, उनके पैसे चले जाते हैं, लेकिन वो कोर्ट में नहीं पेश होते हैं कि यहाँ पे सिर्फ तारीखें मिलेंगी और ऐसे ऐसे सवाल होंगे कि हम अपना हमारा जो राइट्स है वो नहीं मिल पाएगा, मतलब स्मूथ नहीं है काम आदमी के लिए। तो इसको आप किस
जी
नजर से देखती हो और सरकार को क्या सजेशन देना चाहती हैं?
देखिए, मेरा सबसे पहला सजेशन है कि अगर हम कुछ चेंज कर सकते हैं तो वो हमें पहले की जो अच्छी चीजें थी एक्ट में, जो क्लैरिटी थी एक्ट में, उसको बरकरार रखना चाहिए। उसको छोटा करने के चक्कर में उसका जो इसेंस है वो नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि हमें से उसको दो सेक्शन में डालना है, मतलब दो सेक्शन में उसको डालने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, कानून बहुत ही सोच समझ के लिखे जाते हैं, उसमें जो भी नहीं लिखा जाता है वो कानून नहीं होता है ना? तो फिर मेरे लिए कोई एक आम आदमी के लिए रेमेडी क्लियर होनी चाहिए कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। अगर एक्ट में देखा जाए तो दो प्रोविजन है, अपील के भी हैं और ग्रीवेंस एंड रिड्रेसल के भी हैं, जिसमें ग्रीवेंस बोर्ड में आप अपील फाइल कर सकते हो। तो यही क्लियर नहीं है, मतलब एक आम आदमी के लिए ये समझना बहुत डिफिकल्ट है कि कब मैं अपील में जाऊं, कब मैं ग्रीवेंस बोर्ड के पास जाऊं, कब। इसमें दो कमिटीज भी हैं, देखिए, एक्चुअली राजस्थान सर्विस डिलीवरी एम्पावर्ड कमिटी और राजस्थान ग्रीवेंस रिड्रेसल कमीशन। तो कब मैं कमिटी के पास जाऊं, कब मैं कमीशन के पास जाऊं, ये सारा बहुत कंफ्यूजन है। इसको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ, जैसे हमारे पहले के लॉज हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ लेकर आएंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा, लोग एक्चुअली फायदा उठा पाएंगे इस लेजिस्लेशन का। नहीं तो इतने सारे अपने बॉडीज क्रिएट कर दी हैं कि समझ ही नहीं आएगा कौन सी बॉडी के पास कब जाना है।
बहुत बहुत धन्यवाद आंचल जी, आपने अपने सुझाव रखे और सरकार को भी आपकी बात पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और जो बॉडीज की बात आपने की है कि इसमें इतनी ज्यादा बॉडीज हैं कि आदमी कंफ्यूज है कि किस जगह पे हमें जाना होगा। हमसे
जी
बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, आप सुन रहे थे
जी
एडवोकेट आंचल जी को राजस्थान जयपुर से। यदि आप भी कोई बात, कोई खबर यहाँ पर साझा करना चाहें तो शर्मिक वाणी पे नंबर 3 दबाकर अपनी बात साझा करें। आंचल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।